How can I, how can I, where you are? मिट्टी में नदी बह रही है यमुना नदी और यहाँ पर जब रास किया बलदेव प्रभु जी ने जब रास किया तो वहां पर बलदेव प्रभु जी की जो सखियां थी वो केवल और वो भी सखियां थी कृष्ण जैसे रास करते हैं वैसे इनका नहीं इनका रास हुआ था गोपियों को भुलाने के लिए जो कृष्ण का विरह इनमें कम हो जाए बस इसलिए इसलिए कृष्ण के प्रियाओं के साथ में वो रात सब बलदेव प्रभु जी नहीं करते हैं उनको भुलाने के लिए चित्त को जो वो कृष्ण को भूल जाएं किंतु वो भूल नहीं गई क्या हुआ कृष्ण की स्मृति और बढ़ गई वो भुलाने की चेष्टा कर रहे हैं उनकी स्मृति बढ़ती चली गई यहाँ पर उन्होंने रात किया था रात में दो महीने यहाँ पर थे यहाँ पर नहीं थे मैंने ब्रज में थे जिसमें कि यहाँ पर कुछ दिन रहे और यहीं पर गंगा जमुना जी को कहा जैसे तुम भी आ जाओ गोपियों को प्यास लगी है इसमें स्नान करेंगी और यहाँ पर हम लोग क्रीड़ा करेंगे तो जमुना जी नहीं आई वो लजा करके रह गई कृष्ण की प्रिया है ना तो लजा करके रख गई तब उन्होंने हल लिया और हल से वो उधर से जा रही उधर से आ रही हैं और इधर जा रही हैं उन्होंने हल से खींचा और खींचा के एकदम उधर में ले आया जहां पर रास हो रही थी इसलिए यमुना जी उधर नहीं गया उधर से जा करके वैसे और फिर इधर में घूम गए इसलिए आज भी 5000 वर्ष हो गया यमुना जी साक्षी हैं बलदेव जी ने उनको खींच करके पासी में उद्यान एक गांव है उद्यान माने उल्टा बहना और वो उल्टा बहने लगी जाना चाहिए इधर और उधर जाकर के फिर घर में आ गए इसलिए उजान नाम का एक नगर है वहाँ छोटा सा गांव है वहीं से ये लौट करके आ रहे उन्होंने जमुना जी को कौन जमुना जी को लिया जमुना जी तीन है एक तो विशाखा जी ही जमुना है मूल और उनकी और एक प्रकाश है ये जमुना जी फिर जमुना जी दो एक समुद्र की जो पत्नी है वो जमुना जी और एक कृष्ण की जो प्रिया है सूर्य पुत्री जो जमुना है वो तो जमुना जी है
और कलिंद तनया
वही समुद्र में जा रही है
कलिंद पर्वत से
निकल कर तो उनको जब आकर्षण किया तो उनको आकर्षण किया जो समुद्र पत्नी है कृष्ण प्रिया जमुना जी को नहीं तो वही निकल करके आई और उनको जो कुछ काना का करके फिर गोपियों ने वहां पर रास किया और पानी पिया स्नान किया क्रीड़ा किया तो वो स्थान बलदेव जी का है बलदेव जी का बहुत प्रिय स्थान है जय राम घाट जय हम लोग प्रतिदिन इसको गाते हैं अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पर मंदिर दर्शन करेंगे पहले हम लोग आचमन कराए महात्मा जी के हम लोग आज शरण में आए हैं तो अभी हम लोग यमुना में चलिए यमुना में ये दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से हम आकर के और तब मंदिर में चलेंगे मंदिर में दर्शन करेंगे पहले चलिए हम लोग यमुना में आचमन कराए यमुना में आचमन करा करके खेलन बन में आए आगे खेलन बन में हम लोग आए हैं खेलन बन मने इसको इसका नाम अब हो गया है जिसको हम पीछे छोड़ करके शहर को आए उसका नाम है शेरगढ़ तो शेरगढ़ मैंने जैसे विलासगढ़ है मानगढ़ है तो वैसे ये शेरगढ़ नहीं है बल्कि बीच का एक अक्षर निकल गया है जबकि कंपोज करते हैं ना तो कभी कभी बीच का अक्षर गिर जाता है तो ये ख नीचे गिर गया था तो क्या हो गया ये तो ये शेखर गोप का वो स्थान है उसमें आधुनिक भाषा में 5000 वर्ष में एक बीज का अक्षर जो था वो गिर पड़ा है, इसलिए आप लोग शेरगढ़ शेरगढ़ जल्दी में कहते, किंतु वो शेखर वो नंदा बाबा के कुछ रिलेटिव लगते थे, संबंधी लगते थे, इसलिए नंदा बाबा जब वहां से गोकुल से वृंदावन में पधारे छठी करा इत्यादि, तो वहां से आकर के फिर यहां पर कुछ दिन थे, पासी में भय गांव है वहां पर भी कुछ दिन थे, वो भी गोकुल है, नंद गोकुल है, ये भी यहां पर जो खेलन बन जो कहा शेखरगढ़ माने कृष्ण के विलास का ये भी गढ़ है, ये खेलन बन इसलिए इसका नाम पड़ा कि खेलते थे, पहले सखाओं के साथ में नहीं खेलते थे, पहले बच्चा बच्ची सभी मिल करके नंगे हो करके जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो वैसे ये सब सखा सखी सभी छोटे छोटे अभी 3-4 वर्ष के अढ़ाई वर्ष के तो नहीं तो 3 वर्ष तक तो वहीं रहे थे गोकुल में महाबल, इसके बाद में 5 वर्ष के होंगे 4 वर्ष के होंगे, वैसे सब बच्चे बुच्चे गुड़िया गुड़िया जैसे खेलते हैं, अभी पूर्वराग भी नहीं है, पूर्वराग से पूर्व की बात ये, अभी प्रीति जोड़नी आरंभ हुई तब तो फिर पीछे से पूर्वराग होगा, अभी अनुराग हो रहा है धीरे धीरे, सभी एक साथ में खेलते हैं, कभी घरौंदा बनाते हैं, कभी कृष्ण उसको तोड़ देते हैं, कभी राधा रानी कृष्ण का घरौंदा तोड़ देती है, कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है विवाद भी होता है, इसलिए उनके खेलने का नाम है
खेलन बन।
किंतु है ये शेखर गोप जो कृष्ण के रिलेटिव है उन्हीं के का ये नित्य निवास स्थान है और यहाँ पर ये लोग सब आकर के पास में हम लोग गाड़ी जहाज से मुड़ी घूम गई वहीं पर, उसको कहते हैं गोपी घाट, वो गोपी घाट गोपियां वहीं पर स्नान करती थी, पनघट पर वहीं पर आती थी, वहीं पर पीछे से एक बार जबकि जटला कुटना ने लांछन लगाया, अरे ये तो कृष्ण के साथ में इधर उधर घूमती है, इसका आचरण ठीक नहीं है, तो एक दिन कृष्ण ने उनका सतीत्व सिद्ध करने के लिए राधिका जी का एक कौंसल रचा, योगमय ने उनका सहयोग किया और कृष्ण को कुछ हो गया, जानबूझ कर कर लिया और ऐसा कर लिया कि उनको ऐसे वो फिट हो गए, मुठित हो गए, अब उठ नहीं पा रहे। उस समय में योगमय ने कहा कि भाई यदि कोई इसको प्राण देता तो ये बच जाए, कैसे होगा, मैं इसको अभी ठीक कर दूंगी, किंतु यहां पर गोपी घाट है, वहां से कोई पानी ले आए घड़े में और मैं कृष्ण को स्नान करा दूंगी तो ये उठ जाएगा, किंतु घड़ा कैसा होना चाहिए, उसमें सहस्त्र छिद्र होना चाहिए, तो सहस्त्र छिद्र वाला घड़ा मंगाया, का जो कोई ब्रज में साध्वी नारी होगी वो पानी भर करके ले आए और इसको स्नान मैं कराऊंगा मंत्र से तब कृष्ण उठ जाएगा। उन्होंने प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया, ब्रज में यदि कोई सबसे प्रतिव्रता है तो कौन है, कुटिला कुटिला सबसे प्रतिव्रता है, इसलिए कुटिला को बुला लाओ और वो पानी लाए, जैसे हो तो वो बड़ी अकड़ करके सीना शांति हुई वो घड़ा ले लिया, किंतु घड़ा देखते ही ये सहस्त्र सिद्ध है, छाती धड़कने लगी, यदि पानी नहीं आया तो तब मैं पतिव्रता हूं, वो जागतिक पति को ही अपना पति मानने में पतिव्रता समझती है, किंतु जगत के लोग नहीं समझते कि इस पतिव्रता का कोई मूल्य नहीं है, जो परम पति हैं कृष्ण ही यदि पति हैं इनके उनको छोड़ भी दिया जाए तो वो पतिव्रता पतिव्रता है और ये पतिव्रता का कोई मूल्य नहीं, इसलिए वो तो अकड़ करके गई लाने के लिए पतिव्रता के बल पर हम ले आएंगे, जब घड़ा डुबाया और घड़ा उठाया उठाते एक सेकंड के अंदर में समस्त पानी हजारों छिद्रों से गिर गया, फिर वो आकर लौटी नहीं, वैसे किसी प्रकार से जमुना पार करके उधर जा करके और किसी प्रकार से वहां चली गई, जाट में भाग गई आई। अरे भाई वो आई नहीं, क्या बात है, उसकी बेटी को बुलाओ तो। वो बड़ी अपने को पतिव्रता कहती है, तो जटिला की पुत्री राधा जी की ननद कुटिला,
वही तो कुटिला है, कुटिला तो पहले आई।
हम जो कह रहे हैं तो कुटिला को बुलाया, कुटिला आई और उसने भी घड़ा डुबाया और पानी लिया तो पानी नहीं आया, सब गिर गया। अब ब्रज में कोई तैयार ही नहीं हो जो पानी लाए, बहुत चेष्टा की गई किंतु कोई नहीं तैयार। अंत में उन्होंने कहा कि देखो वो वृषभानी जी की लाडली जो बेटी है उसको यदि किसी प्रकार से लाओ और वो यदि तैयार हो तो होगा, किंतु वो आए कहिए मैं घर से निकली हूं नहीं, हमको तो यही बदनाम करते हैं, मैं नहीं जा सकती। अब अंत में यशोदा जी को पड़ा वो गरज, यशोदा जी आई और सब सखियां आई, आकर के इनको मनाया। जटिला तो थी नहीं और कुटिला तो उधर में मुख छिपा करके भाग गई है। बड़ी कहानी सुनने के बाद में, बड़ी मनावत करने के बाद में तब राधा जी आई और राधा जी ने घड़े में डुबाया और कहा कि आज यमुना जी और स्वयं कृष्ण हमारी लाज रखे, और डुबाया और पूरा सिर पर ले लिया और एक बूंद भी पानी नहीं निकला, और ले आकर तो वहां पर सभा स्थल में लाई और सब लोग जय जयकार करने लगे। सब जय जयकार में पति प्रताप यदि ब्रज में है तो कौन है केवल, बस एक यही दुष्भांगी की लाड लीजिए है, बस एक ही पति प्रताप, कोई दूसरी पति प्रताप ही नहीं। सखियों को बड़ा आनंद हुआ, सब लोगों का मुख मलिन हो गया। अब सबसे अब ये अकड़ करके नहीं बोलती थी राधा जी से, और इन्होंने जोग माया ने चारों तरफ में डोरा पिटवा दिया, ब्रज में ही यदि कोई पति प्रता है तो पानी देते ही कृष्ण के ऊपर में, और कृष्ण एकदम उठ गया। इस तरह से कृष्ण ने उनकी पतिप्रता का स्थापन किया। वो स्थान वही नंदघाट है, खेलन वन है, यहाँ पर और भी क्रीड़ा कौतुके हुआ करती थी। वहां से हम लोग यहाँ पर नंद रामघाट में आए। रामघाट की कथा आपको संक्षेप में शुभानंद जी ने बतलाया। यहीं पर बलदेव जी ने राज किया था और यमुना जी को हल से खींच करके जो उधर से जा रही थी, हमने दिखलाना भूल गया, वो ऐसे जा रही थी और उन्होंने ऐसे खींच करके यहाँ पर ले आए। यहाँ पर एक यही प्रश्न होता है, जो कृष्ण की प्रियाएं क्या बलदेव जी के साथ में राज करती थी? इसका समाधान दो प्रकार से किया है हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे टीकाकारों ने। पहला तो ये जो बलदेव जी की भी अलग से प्रियाएं थी और कृष्ण की प्रियाएं थी अलग, बलदेव जी की बहुत सीमित। उन्होंने ये कहा जैसे यहाँ पर वो सबका प्रश्न ही नहीं है, वो राज का यहाँ तो विरह में जो तड़प रही थी गोपियां, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय उन्होंने किए, उसमें से एक उपाय था नित्य करके और भुला दी। किंतु जब वो रास इत्यादि करने लगे तो गोपियों को कृष्ण की स्मृति आने लगी। जो जो काम भूलने के लिए कृष्ण को करते हैं, नंद जी आते हैं नंद घाट में कृष्ण को भूलने के लिए, और यहां पर देखते हैं कि वही पनघट, वही सब चीजें, वही कृष्ण का स्थान, कृष्ण के पैरों की छाप, बस और बिलख लग करके रोते हैं। गोवर्धन में जाते हैं कृष्ण को भूलने के लिए और उनकी स्मृति आती, इसलिए गोपियों की स्मृति और कृष्ण की होने लगी। यहां तक कि बलदेव जी ने और गोपियों ने, गोपियों को उस समय बलदेव जी से नहीं बोलना चाहिए, किंतु लिखा जैसे उनसे हंस करके बातें की और सब किया बात किसी के साथ में, किस लिए? उनको होश नहीं है, वो तो एकदम कृष्ण के विरह में पागल सी है, कैसे इनसे बातचीत करना चाहिए? अब जेठा का और क्या होता है बहू का ये कोई संबंध वहां पर रह नहीं गया, उसे अतीत हो गए गोपियां सभी, और उनसे कृष्ण से किस लिए ताना मार रही हैं। जो ब्रह्म ज्ञान उनके साथ में दिया आपको भी वही सिखलाया। एक किंतु बात यहां है, सिद्धांत की बात। बलदेव जी एक बरस तक कृष्ण के प्रभाव को नहीं जान सके, माया को। कब?
गोवर्धन
धारण कर नहीं समझ सके। जब उस लीला को ही नहीं समझ सके, कृष्ण की माया ने उनको मोहित कर दिया, तो बलदेव जी के लिए क्या करेंगे? बलदेव जी नहीं समझ पा रहे हैं जैसे ये कृष्ण क्यों गया ब्रज को छोड़ करके और क्यों नहीं आ रहा। गया तो गया, एक बार आता, रास्ते में कुरुक्षेत्र कहाँ जा रहा है, कुरुक्षेत्र और दिल्ली हस्तिनापुर कहाँ का, एक बार यहाँ पर आ जाता। अरे यहाँ पर आकर रहता कुछ दिन, नहीं रहता तो आकर के चला जाए, छोड़ क्यों दिया उनके समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझते हैं कौन? एकमात्र कृष्ण ही समझते हैं और कोई दूसरा नहीं समझता। निकट रहने से गोपियों को इतना बढ़ जाता है दिरह, भावी दिरह के लिए तड़पने लगती हैं, और जब कृष्ण से दूर रहती हैं तब उसके दिरह में इतनी तन्मय हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि कृष्ण तो यही हैं। उनसे बातचीत करती हैं, बड़े खाती हैं पीती हैं, एक तमाल वृक्ष को दे करके कृष्ण समझ करके उसे बातचीत करती हैं, आलिंगन करती हैं। और कृष्ण जब निकट बैठते हैं तो दिरह में एकदम से कहाँ कृष्ण, कृष्ण से पूछती है, कृष्ण कृष्ण कहाँ कृष्ण है, कहाँ कृष्ण है, ऐसे भाव में विभोर हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने देखा कि हमारे निकट रहने से इनको विरह का दुख होता है, उसका मैं प्रश्न नहीं कर सकता, इसलिए हमको दूर ही रहना चाहिए जब विरह में भी मिलन उनका हो। बलदेव प्रभु जी इसको नहीं समझ पा रहे थे और कृष्ण समझा नहीं पाते थे। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आदमी किसी को समझाना चाहे किंतु वो कह नहीं चाहता अपने विरह की बातें। ऐसे ठीक कृष्ण की बात थी, सब समझते हैं सब कुछ है किंतु कह नहीं सकते, बलदेव से भी नहीं कह। इसलिए बलदेव आए सांत्वना देने के लिए किंतु वो सांत्वना नहीं हो सकी, अंत में खींच करके यहां से गए। गोपियां से मर रही है, तड़प रही है और कृष्ण को देखने के लिए, सांत्वना देने के लिए नहीं आ सकता, इसलिए वो गए। जैसे प्रतिज्ञा किया मैं जाऊंगा और जरूर उनको लेकर के आऊंगा यहां। इसलिए बलदेव जी तीन पीछे दो महीने के बाद में चले गए, किंतु कृष्ण वैसे ही फिर जो उन्होंने भुला दिया, नहीं आए। आए कब? आए संत भक्त के वक्त के समय में, वो भी भागवत के अनुसार में नहीं बल्कि और दूसरे पद्म प्राण इत्यादि के अनुसार। हमारे गोस्वामी लोग अत्यंत विरह नहीं चाहते हैं कि सब समय विरह हो, इसलिए दोनों को मिलाया पीछे से जीव उन्होंने रूप को शामिल। विरहांत नहीं होना चाहिए, विलनांत तो होना चाहिए। इसलिए जैसे तैसे द्वारका की लीला की रचना करके ललित माधव और विदग्ध माधव और उन दोनों को किसी प्रकार से मिलाया, किंतु भक्तों को संपना नहीं मिली। हमारी राधा जी कभी नहीं जा सकती हैं द्वारका, कृष्ण बल्कि यहां रहे तो वो सब स्थान है। बलदेव जी कृपा करें ये हम लोग भक्ति में प्रवेश कर सकें, उनकी करुणा को हम लोग समझ सकें, बस इसलिए हम लोग आए हैं बलदेव जी की कृपा लाभ करने के। बहुत ही दुर्गम स्थान है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, अब तो रास्ता हो गया और सब लोगों ने सीख लिया, पहले कोई नहीं आता था, हम भी लोग पहले यहाँ पर आना आरम्भ किया, धीरे 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 सभी लोग आने लगे। हम लोग पहले आए थे आज से गुरु जी के साथ में 1900 कितने में, 54 से भी पहले, उसमें कोई रास्ता घाट कुछ नहीं था, किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से पैदल 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 का रास्ता है। मुंजा कभी पासी में ये सब था, कभी भांडी बट उधर कभी इधर, इधर भी हम लोग आज चलेंगे इसके बाद में। अभी हम लोग बिहार बन चलेंगे और बिहार बन से फिर दर्शन करके हम लोग अक्षय वट गोपी तपोवन और इसके बाद में श्री नाथ। बोलो बलदेव प्रभु की जय, राक्षसहरी की जय, गौ प्रेमानंदे।
साथ में बिहारी कुंड, बिहार कुंड और ये बिहार वन बहुत ही सुंदर वन है। इसमें अभी भी मोर, हिरण, कोयल, ये सब कुहपते रहते हैं, विचरण करते हैं। अभी हम लोग जाएंगे, बैठेंगे, कीर्तन करेंगे, देखेंगे मूर लोग सब बोलना आरंभ कर देंगे। एक बार हम लोग आए थे तय साथ में, सब बोलने लगे मोर, के का सब बोलने लगे। अब यहाँ पर कृष्ण ने विहार किया था, ये कृष्ण की लीला स्थली है। वहाँ पर राम घाट में राम बलदेव जी का और यहाँ पर कृष्ण का विहार स्थली है। यहीं से ये बीच का स्थल है, यहाँ पर जमुना जी पासी में नीचे में बह रही हैं। यहीं से जमुना जी की धारा उधर से देखा वो मुड़ करके फिर इधर में चली गई। अब इधर से वृंदावन होती हुई और खिलिया करती हुई और चली गई हैं मथुरा की तरफ में। ब्रज को चारों तरफ से घेर करके बर्फ से मानो निकलना नहीं चाहती हैं, ऐसी है यमुना जी है। उसी के किनारे अभी रामघाट गए थे, अब उसी के किनारे फिर यहाँ पर आए। अब इसी के किनारे हम तपोवन में जाएंगे, अब यमुना के किनारे, और फिर हम जाएंगे फिर घाट में, तो वहाँ पर ही यमुना जी मिलेंगे। फिर वहाँ से बत्सवन जाएंगे, वहाँ पर भी यमुना जी मिलेंगे। फिर वृंदावन में ये मिलेंगी, बेलबन में यही मिलेंगी। चारों तरफ से ये घेर करती है यमुना जी। यमुना जी को निकाल दिया जाए तो वृंदावन रहेगा ही नहीं। यहाँ सुषुम्ना नारी चारों तरफ में घूमती रहती है। तो ये बिहार वन है, कृष्ण गोपियों के साथ में यहाँ पर विहार किया था, सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए आते थे। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। अभी वल्लभाचार्य के नहीं, तटीय स्थान वृंदावन में उन लोगों का स्थान यहाँ पर है। बहुत काल से यहाँ पर सेवा हो रही है, गो सेवा होती है यहाँ पर और लोग भजन करते हैं यहाँ। अब भजन क्या करते हैं हम तो नहीं जानते, तो गो सेवा इत्यादि तो करते ही हैं और निर्जन में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, किंतु मुख्य स्थान है कृष्ण का गोचारण का और सबसे अधिक स्थान है बिहार का। चलो बिहार बन की, चलिए एक मिनट बैठ करके वहाँ पर यहाँ की चर्चा बेटा, पैसे 10 पैसे जरूर प्रणाम मिलेंगे। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे, भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां, स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यां, वदामि राधाम् करुणाभराद्रं, ततो मम नास्ति गतिर्नकार। हम लोग अभी बिहार वन में आए हुए हैं। सचमुच में ये बिहारी वन है। अभी दृश्यमान प्रकाश में यदि ऐसा सुंदर दिखता है तो जिस समय प्रकट होकर के कृष्ण यहाँ पर विहार करते होंगे गोपियों के साथ में, सखाओं के साथ में गोचारण करते आए होंगे। अब इसे सर के सखाओं को भी दर दर हटाकर यहाँ गोपियों के साथ में कदम्ब खंडी में रासस्थली में रास करते होंगे। रासस्थली है, उस समय की क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी। वृंदावन में हम रास स्थली देखते हैं बंसीवट, किंतु वहां पर ये सब दृश्य नहीं है। वहां पर शहर हो गया है, बिजली की चाका चौंध हो गई है, पार्टी में सेवा कुंज है। सेवा कुंज तो अभी कुछ कुछ है किंतु ऐसा सजीव नहीं है। वहां पर मोर नहीं है, मोर और मोरनिया लाखों लाखों यहाँ पर जैसे वहां पर नहीं है। जैसे यहाँ पर गायें देखते नहीं, हजारों हजारों गायें यहाँ पर अभी तो शायद चरने के लिए चली गई हैं, उनके बछड़े फुदक रहे हैं, देख रहे हैं। वृंदावन में ये नहीं, न सेवा कुंज में होगा, न बंसीवट में, दृश्यमान स्थिति में ये नहीं है, मधुबन में भी नहीं है। वहां पर कुंज तो है किंतु कैसे कुंज ठूठे अब हो गए हैं, कृष्ण के विरह में तड़फ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पेड़ों पर लताएं हैं, यहाँ पर कमाल वृक्ष है और उस पर लता चढ़ रही है बड़ी उत्फुल्ल होकर के। मयूर उस पर केका करते हैं, कोयले कुहू कुहू करते हैं, न जाने क्यों अभी आप लोगों को देख करके मोर आप लोगों का स्वागत नहीं कर रहे,
स्वागत
नहीं तो
चला
नहीं तो हजारों हजार मोर एक साथ में बोलने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। विशेष करके बरसात के दिनों में जब मेघ हो जाता है और ये देखिए काली काली ये सब पेड़ों की छाया में और जरा काला हो जाता है तो अपने आप मयूर अपने पंखों को उठा करके और नृत्य करने लगते हैं। यहाँ का वृंदावन में करीब करीब सब वन कट रहे हैं, कट गए, अब थोड़ा सा कहीं कहीं है। वृंदावन में देखने के लिए एक स्मृति के लिए निधुवन और सेवा कुंज है और तो सब वहाँ का खत्म हो गया। वनों में जहाँ हम सुनते थे अच्छे अच्छे जब वन थे वो सब लोगों ने काट दिए, विशेष करके राजनीति के वजह से सब ये अंतर ध्यान हो गए। यही बची खुचे हैं यहाँ पर देख रहे हैं। हम अभी गए थे खंडीर वन में, वहाँ पर थोड़ा सा है किंतु वो भी ऐसा नहीं है। अभी ब्रजवासियों ने और ये यहाँ पर महात्मा जी बैठे हुए हैं इन लोगों ने अभी कुछ रखा है, नहीं तो इसको भी जोत काट करके खत्म कर देते। हम लोग आते हैं तो वृंदावन की स्मृति होती है, मयूर नाचते हैं, कोयल भक्ति है, तितली देखिए सब नाच रही हैं, खुल रही हैं, कैसे कैसे ये तमाल वृक्ष अभी भी कदम्ब खंडी यहाँ पर है, अभी भी बिहार बिहार कुंड है, बिहारी जी यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, सब अप्राकृत दृश्य है। तो जिस समय कृष्ण होंगे उस समय में क्या स्थिति है, यहाँ पर षड ऋतु एक साथ में वर्तमान रहती थी, सब समय बसंत ऋतु छाई रहती थी, मधुमास छाया रहता था। इसे बलदेव जी वहां पर आए निकट में ही, निकट में राम घाट में हम जहाँ पर गए थे, यहाँ की कथा आप लोगों को हमने बतलाई। एक बार हम लोग आ रहे थे, आते आते करीब करीब शाम को ना सवेरे सवेरे इसी समय में आए थे हम लोग, तो हम लोग ये छोटे वन में भी उस समय में और भी घना था, तो हम लोग थोड़ा सा रास्ता जैसे आप लोग भूल गए, यहाँ से एक मिनट का रास्ता था वहाँ से नहीं आकर के आप लोग उधर से आए, तो वैसे हम लोग भूल गए, तो हम लोग वन में भीतर में घुस गए इसमें और कांटे लग रहे हैं, उन्हें कांटे छोड़ नहीं रहे, मयूर चारों तरफ में इधर उधर भाग रहे हैं। अपूर्व दृश्य, हम समझते कि यहाँ पर हिरण भी कभी कभी आते होंगे, हिरणिया भी अभी आती होंगी और कहीं ब्रज में देखे जाते हैं, सब अंत ध्यान होता चला जाए। कुछ दिन एक ऐसा आएगा जबकि ये सब कुछ नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा, किंतु अभी हम लोग का परम सौभाग्य है ये ब्रज की अभी थातियां अभी भी कुछ हम लोगों के प्रेरणा के लिए उद्दीपना के लिए अभी ये सब अभी चीजें हैं। मुझे तो यहाँ जब आता हूँ मुझे सचमुच में ब्रज की स्मृति होती है और भावों की उद्दीपना होती है। जो चीज चाहिए कृष्ण के अभी जो कीर्तन किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का
राधा कुंड
राधा कुंड
कुटी
कुंड कुटी वो भी कीर्तन अभी सुन रहे हैं, इसके बाद में आप लोगों का स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर सभी चीजें हैं,
बोलते स्वागत करता
जैसे आप लोग आप हरि कथा कहिए जब भी आते हैं, ये सब चीजें और कहीं भी दुर्लभ है, कहीं भी जाएंगे ये सब ये जानते हैं क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमें कृष्ण छोड़ करके कहाँ चले गए ये कह रहे हैं, गोपियां हमें छोड़ करके कहाँ चली गई, अब उनके विरह में ये तड़प करके के और क्या कर रहे हैं, कृष्ण को नहीं देखते हैं, उनके साथ में उनकी ताल पर नाच नहीं रहे हैं। वृंदावनम वो बितनी प्रकृति जब देव की सुतम पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुम अनुमत्त मयूर अनित्यम अवर्तानी समस्त सस्तम। जब यहाँ पर कृष्ण जब बंसी गान करते थे बंसी पर गान करते थे उस समय मयूर खिरक करके नृत्य करते थे बड़े ताल और स्वर के साथ में, और उस समय में जितने पशु पक्षी हैं सब मौन हो करके पेड़ की शाखाओं पर बैठ करके और दर्शन करते थे और आंख बंद कर देते थे पेड़ पर रहते। गोपिया कहते अहो बताम विहंगा मुनयो बनस्मिन, अरे ये वृंदावन वृंदावन के ये जो पशु पक्षी हैं, ये साधारण मुनि जैसे लग रहे हैं, आंख बंद करके और बंसी ध्वनि सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, मयूरों का नृत्य देख रहे हैं, ये साधारण नहीं है। ये कैसे हैं? यहाँ के वृंदावन के जो पक्षी हैं वो साधारण मुनि नहीं है, ये वेद कल्प लता की एक मधुर डाली निकली है शाखा, वो उसका नाम है प्रेम, उस पर बैठी हुई है ये। अब बैठ करके कोयल कुहू कुहू कर रही है, मैंने राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम ले रही है, और मयूर उन्हीं पर नाच रहे हैं। ये नाचने वाले ऋषि हैं, मौन रहने वाले यहाँ के वृंदावन के ये सब पशु पक्षी नहीं है। कैसे हैं? कृष्ण नाम का सब समय, राधा नाम का कीर्तन करने वाले हैं और नित्य करने वाले हैं, दोनों हाथ से हरि बोल हरि बोल हरि बोल इस प्रकार से कर राधे राधे का करके नित्य करते हैं ये सब। इसलिए मयूर कोयल सूक और सारी ये वृंदावन की हैं। ये प्रेम की डाली पर बैठकर कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जो ज्ञान के निम्ब रूपी वृक्ष के ऊपर में ज्ञान की डाली पर बैठे हैं वो वृंदावन में नहीं आते, वो वृंदावन से बहुत दूर, वो शाखा चली गई है काशी में और एक किसी चली गई हरिद्वार में, वो वहां पर रहते हैं, वो लोग यहाँ नहीं वो प्रवेश कर सकते। कृष्ण को देख करके भी ध्यान लगाएंगे, नित्य और गीत नहीं करेंगे, किंतु वृंदावन के ये सब है। इसलिए वृंदावनम सखी भो बिन सुनो तो कीर्ति, विश्व की कीर्ति को उज्जवल कर रहा है कौन? ये वृंदावन क्यों कर रहा है? यहाँ पर कि कृष्ण बंसी धेनु करते हुए और राम के साथ में यहाँ पर गोचारण करने के लिए आते हैं। कैसे आते हैं? गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं और उसमें जो अनु जो छोटा है जो पीछे चल रहा है और जो छोटा है अनु वो कौन है? श्याम। उसके मुख से बंसी निकलती है ध्वनि और मंद मंद मुस्का करके अपनी कटाक्षों से किसी दूसरे को देख रहा है, श्रीमती राधिका जी के तरफ में। उस समय आंखों का फल यही एकमात्र है जो उसका दर्शन करे और उसका कीर्तन सुने, और आंखों का फल हम नहीं जानते हैं जो क्या है। अक्षणताम फलम इदम न परम विदाम, आंखों का फल इसके अतिरिक्त और कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। आज हम लोग का परम सौभाग्य है, उसी बिहार मन में हम लोग यहाँ पर आए हैं, प्राकृतिक सीनरी देख रहे हैं। आप लोगों को इसीलिए लाया कि आप लोग दर्शन करें और कृष्ण लीला की स्मृति हो और कृष्ण भजन में रुचि हो आप लोगों की। कृष्ण के भजन में भी वैसे तैसी रुचि नहीं, गोपियों की भाव को लेने की और उस प्रकार से कृष्ण को रिझाने की चेष्टा होनी चाहिए जिसको कृष्ण स्वयं रिझाते हैं, ऐसी गोपियों का भाव विश्व में इससे बढ़ करके और नहीं है। इसलिए यहाँ सब स्थलों का भाव देख करके ही सुखदेव गोस्वामी ने उद्धव के माध्यम से बतलाया, आसाम हो चरण रेण जिसाम हम श्याम बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेण माफिक संसार, गोपियों की चरण धूली की वंदना की है। हम लोग उसी के लिए लालसा से आए हैं, आप लोग यहाँ पर गोपियों की चरण की धूली बिहार मन में जरूर हुआ अभी भी है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। आज हम लोग धन्य है इस स्थान में आकर के, आप पेड़ों की जगह ये सब साक्षी हैं कृष्ण के बिहार के लीला के। ये कदम्ब वृक्ष है यहाँ पर पासी में, ये तमाल वृक्ष है, ये सब देख रहे हैं, ये लता पता गुल्म नहीं है। जब किंचित तीर्ण गुल्म की कट मुखम गोष्ठे समस्तंग सर्वानंद मुकुंद दैतम लीला अनुकूलम परम शास्त्र मुहुर् मुहुर् निशंकितम जंच ब्रह्मा देर पिशस्ति हम तो सर्वम मया इदम। यहाँ के जितने तरु वृक्ष लता गुल्म यहाँ तक कि सांप कीकट बिच्छू मच्छर जो कुछ है सब लीला के अनुकरण है, अनुकूल है कृष्ण के, सब कृष्ण की उद्दीपना कराते हैं। इसलिए हम लोग आए हैं ये इनका दर्शन स्पर्श इनकी छाया में जाएंगे और हम लोगों का जीवन धन्य उठेगा, हमारे कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में प्रवाहित होगी, इसलिए आए हैं। आप लोग यहाँ की धूली अपने सिरों पर लगा करके और प्रणाम करके फिर चले। मेरी तो इच्छा थी जैसे कुछ और यहाँ पर बोलता किंतु बहुत विलंब, एक डेढ़ घंटा हमारा बस विलंब हो गया, इसलिए हमारा समय बहुत कुछ निकल गया अब यहाँ से हम लोग चलेंगे शेरगढ़ होते हुए, जैसे कान है शेखरगढ़, शेरगढ़ नहीं ख उसमें से निकल गया है, ब्रजवासी लोग जल्दी से उच्चारण कर लेते हैं, इसलिए वो शेरगढ़ और शेरगढ़ नहीं शेखरगढ़। वहीं पर गोपी घाट है, जहाँ पर कि मैंने गोपी घाट की बातें बतलाई। वहाँ पर और भी बहुत से मदन मोहन गोविंद जी मंदिर है, पार्टी में उजानी है, ये सब छोड़ करके हम लोग आए हैं। अब यहाँ से हम लोग चल करके और अक्षय वट चलेंगे, गोपी तपस्या का स्थल तपोवन चलेंगे, वहाँ से खीर घाट में जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद पाकर के स्नान करके विश्राम करें, इसलिए वहीं पर हम लोग स्नान करते। बोलो बिहार बन की, बोलो बिहार बन की, बोलो बिहार बन की जय। गौ प्रणाम जगह है या और रहे, किंतु कीर्तन में ढिलाई मत आना चाहिए। जिस दिन ढिलाई देखेंगे ना, ये स्थान है अक्षय वट। किसी कोई कोई लोग इसको भांडीर वट भी कहते हैं और अधिकांश लोग इसको अक्षय वट कहते हैं। यहाँ आने से अक्षय फल मिलता है। अक्षय फल क्या है? भक्ति ही, कृष्ण भक्ति ही अक्षय फल है, बाकी सब क्षय फल है, सब रह जाएगा जगत में। किंतु लोगों को विश्वास नहीं होता, क्षय फल के लिए ही सब लोग तरसते हैं और सबको अपने तरफ में इधर में खींचते हैं। अक्षय फल के लिए कोई तैयार नहीं होता और अपने प्रिय व्यक्तियों को अक्षय फल के लिए लगाने में गड़बड़ हो जाती। तो ये अक्षय वट वृक्ष है। यहाँ पर इस ग्राम का नाम है कसरौट। कसरौट माने कसरत,
कसरत
कसरत कसरत से कसरौट माने सखा लोग कसरत करते थे इस वट वृक्ष के नीचे। अखाड़ा था उनका, पहलवानी करते थे। श्रीमती राधिका जी ने, ललिता जी ने कहा, सखा हमने सुना है आप तो कहते हैं कि मैंने सबको हरा दिया, हम सारे जैसा कोई बलवान, किंतु प्रभु आपको श्री राम ने कितनी बार हराया है, आपकी नाक ऊपर में कितनी कितनी बार हुई है। और श्री राम ने, मधुमंगल ने और सखाओं ने आपकी पीठ को अखाड़े में छुआ दिया, ये कितनी बार हुआ। हमने सुना है आप तो बड़ी बड़ी डीग हाँकते हैं, किंतु हमने सुना है जो सुबल ने आपको पछाड़ दिया। किसने कहा जे ये कौन आपसे कह दिया, मैंने तो बड़े बड़े राक्षसों को पछाड़ दिया। सखा लोग हमारे सामने क्या आएंगे, मैंने सुबाल को, सिद्धाम को, सबको हमने पछाड़ दिया है, तो कभी हो ही नहीं सकता। हमने सुना जा सब समय हारे हैं, यदि जीत है तो आज आप अपनी कसरत दिखलाइए, अपनी पहलवानी दिखलाइए। हम लोग अखाड़े में पहलवान को उतार रहे हैं, आप भी उतर आइए। तो किसने कौन सा पहलवान है, तो आप पहले उतारिए। तो जब कृष्ण जी अखाड़े में लगन पान करके उतर गए, तो सखियों ने श्रीमती राधिका जी को पहलवान बना करके और उनको उतार दिया। और कुश्ती दंगल हुई और राधा जी ने कृष्ण को यहीं पर पछाड़ करके उनकी पीठ को लगा दिया और कृष्ण हार गए। किंतु हार करके भी कृष्ण जीते और जीत करके भी राधिका जी हार गए। यहाँ हारने में आनंद है, जीत है, और जीतने में हार है। इसमें ये प्रेम ही प्रेम नदिया की बह,
प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार,
उल्टी बहे धार, सभी उल्टी ही बातें हैं। तो यहाँ पर हार करके भी जीतना और जीत करके भी, ये कसरौट ग्राम है, यहीं पर ये अक्षय वट है। जिस समय गोपियां इधर में रहती थी तो यहाँ से पास ही में यमुना के किनारे ये तपोवन है और पास ही में यहाँ पर चीर घाट है। उस समय ये कसरौट गांव के पास ही में गांव था, वहां पर नंद बाबा इत्यादि रहते थे और श्रीमती राधिका जी के पिताजी विष्णु महाराज जी भी गोपों को लेकर के पास में रहते थे किसी गांव में। और गोपियां यहाँ से नदी है निकट ही, यही पास जो दिखता है वो पे यहीं पर तपोवन है यमुना के किनारे। तप करती थी रात में 4 बजे गंगा यमुना के किनारे में आ जाती, कृष्ण का कीर्तन करती हुई आती और वहां से एक साथ में जाती वहां कात्यायनी जी का जहां स्थान है, ये तपोवन है और वो कात्यायनी का स्थान कीर घाट है। एक महीने तक व्रत किया था कठोर व्रत, सवेरे में कौन महीने में
अग्रहण महीने
में, अग्रहण महीने में जिस दिन हम लोग का व्रत पूरा था उससे लेकर के एक महीने तक उसमें खूब जोर से सर्दी और ठंड रहती है उसी समय में। और वहां पर जाकर के और वहीं पर कात्यायनी जी की पूजा करती थी, शायद तपोवन इसीलिए कहा गया यहीं पर स्नान करके तब वहां पर कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाती थी। तो वो तपोवन है और वहां पर तीर घाट है, हम लोग आप लोग यदि कहें तो वो जो दिखाई पड़ रहा है वहां पर है तपोवन, वहां पर चलेंगे और नहीं तो यमुना के किनारे हम लोग जाएंगे वहां वहीं पर तीर घाट में हम लोग दर्शन कर लेंगे। यहां जाने में बहुत विलंब होगा, प्राय 11 बज गया है इसलिए यहीं से हम लोग चलिए दर्शन करेंगे। और यहां की कथा तो यही है किंतु बहुत विस्तृत है ये सब चीजें, एक ही तरह की लीला मैंने कहा हजारों प्रकार की लीलाएं हुई होंगी यहाँ पर, कृष्ण गोचारण करने के लिए भी यहाँ पर आते थे और ये सब गांव में अभी भी ब्रज की रीतियां नीतियां ये सब पहले जैसी ही है। मथुरा वृंदावन तो करीकल शहर हो गया किंतु यहाँ पर ये सब चीजें सुरक्षित हैं और गोपियां भी यहाँ से जाती हैं वहां पर स्नान करने के लिए तपोवन में। बहुत से महात्मा लोग वहां पर रहते थे, अब बहुत कम महात्मा लोग रहते हैं, गौड़ीय वैष्णव लोग विशेष करके इन सब स्थानों में भजन करते थे, एकदम निर्जन स्थान में रहने में रह करके करते थे। तो अब स्थान तो प्राय सुना पड़ा हुआ है, 2-4 कभी कभी साधु आ जाते हैं। अभी सिर घाट में गांव है, क्या नाम जिन्हें गाँव का नाम है चारो या क्या नाम है सेहरा नाम का नाम है। अभी आप लोग यदि कहें तो मैं चलूंगा किंतु 1 माइल जाना 1 माइल आना होगा, अब जरा दूर है, अनेक धूप हो गई है। चलिए यहाँ का दर्शन हम लोग वहीं पर स्नान करेंगे, वहीं पर थोड़ा सा विश्राम करेंगे और फिर प्रसाद पाएंगे, विश्राम करके तब वहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? जाओ परिक्रमा
कोई नई चीज नहीं है,
अनादि काल से ये ब्रजधाम है, उनकी लीलाओं को देख करके श्रवण करके नए नए साधकों के हृदय में कृष्ण को पाने की लालसा होती है, स्थितियों को भी इसमें लोभ हुआ और 7,000 दंडकारण्य ऋषियों को भी लोभ हुआ जो गोपियों ने जैसे कृष्ण के साथ में रह करके उनका भजन किया था हम लोग भी उसी प्रकार से उनकी सेवा करें। उन लोगों ने रास किया था, रास के द्वारा कृष्ण को तृप्त किया था, हम लोग भी वैसे ही कर सके। जगदीश जी सोइए मत, जाइए पीछे खड़े हो जाइए। तो वैसे एक ही नहीं, जूत के जूत अकेले साधक भी जैसे अभी भी हो सकता है कि कृष्ण की लीलाओं को सुन करके किसी को लोभ उत्पन्न हो जाए कि हम गोपियों की भांति कृष्ण की सेवा कर सके, राधा जी की सेवा कर सके, इसलिए बहुत दिनों से जो लोग आराधना कर रहे थे कोई 1 कल्प कोई 2 कल्प कोई 10 कल्प से योग बया ने किसी लोगों को योग्य देख करके और गोपियों के गर्भ से यहाँ पर जन्म दिलाया। वो लोग जनकपुर की राजकुमारी आदि हैं, 60,000 दंडकारण्य निवासी भी हो सकते हैं, इसके बाद भी यूथ के रूप में, अयूथ के रूप में, एक अकेले रूप में, कोटि कोटि वर्षों से जो साधन कर रहे हैं इस भाव से, काम गायत्री और गोपाल मंत्र जप रहे हैं, वो लोग इसमें जन्म लिया गोपी के रूप में। और जब वो छोटी छोटी थी तो ब्रज का यह सब जगह नियम है, यदि वर्षा नहीं होगी